जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Yeah.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada ki jai. Krishna kirtana gana nartana paro premamritam bonidhi. Priyo priyakaro nirmataro pujito
dhira dhira jana
priyo priyakaro nirmataro pujito Sri Chaitanya kripa bharo bhuvi bhuvo Aravahantarako Vande Rupa Sanatana Raghu Yuga Shri Jiva Gopalako Nāshāstra vichārane kanipuno Saddharma sanstāpako
Nāshāstra vichārane kanipuno Saddharma sanstāpako
लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ दादा कृष्ण पदारवे दभजना नंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो कृतनौ तनुभृता गोविंद गानामृत आनंदाम्बुदिवर्धने कनिपुनो कैवल्य निस्तारको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्वातुर्नमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्च भूत्वा दीनकणेशकौ करुणया कौपीन कंताश्रितो गोपी भावर सामृता दिलहरी कल्लोल मग्नो मुहु वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने Thank you. राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतो ततो यो मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको संख्या पूर्वक नाम गानतिभि कालावसानि कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चादंच दीनौ चयो राधा कृष्ण गुणा स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कलेन्दितनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदारेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको राधे व्रज देविके च ललिते हे नन्द सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालेन्दे वन्ये कुता गोशन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे त्रैदेर्महाविह्वलो ब वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे षट गोस्वामी अष्टकम की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेश भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञाद्विरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्तदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवाशवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने नुरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः ವೈಷ್ಣವಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೈ ನಮಃ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯತಾಂ ಸುರತೋರ್ಪಂಗುರ್ ಮಾಮಂದಮತೆರ್ಗತಿ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವಪದಾಂಬೋಜೋ ರಾಧಾಮದನಮೋಹನೋ. ದಿವ್ಯದೃಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದಃ ಶ್ರೀಮದ್ರತ್ನಾಕಾರಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೋ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾಶ್ರೀಲಗೋವಿಂದದೇವೋ ಪ್ರಶ್ರಾಲಿಭಿಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸರಸಾರಂಭಿ ವಂಶೀವಟತಟಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ಷಂ ವೇಣೋಸ್ವನೇರ್ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ರೀಯಸ್ಮಃ ಸಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ಋಷಭಾನುಸ್ತುತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕಲಂ ಶೀಲ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಜೀವಗೋಸ್ವಾಮಿಕ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯ. ಶೀಲ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿಕ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವ್ರ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ದೂಸರಿ ಬಾರ್ ಬೇಂಟ್ ಹುವಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಮೇ ಅವ್ರ ಉದರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಮೇ ಜಬ್ ಬೇಂಟ್ ಹುವಾ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಲೀಲಾ ಹುಯಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ನೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಉಸ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಾದ ಪ್ರಯಾಗ್ ಮೇ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಕೆ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ ಜಾಕೆ ಸುಬುದ್ಧಿ ರಾಯ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಪರಿಕ್ರಮಾ ಕರ್ಕೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಅನುಪಮ್ ಯಾ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ ವೋ ದೋನೋ ಬಂಗಾಲ್ ಕಿ ಓರ್ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ಜಾನೆ ಕೆ ಸಮಯ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಲಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಂಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ನಾಟಿಕಾ ಕೋ ರಚನಾ ಕರುಂಗಾ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಬಂಗಾಲ್ ಪಹುಂಚೆ ಅನುಪಮ್ ಕಾ ಮೃತ್ಯು ಹೋ ಗಯಾ ವೋ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಕಿಯ ತಬ್ ಥೋಡಾ ವಿಳಂಬ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ ಕ್ರಿಯಾಕಾಂಡ ಮೇ ಇಸ್ಲೇ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಜಬ್ ಬಂಗಾಲ್ ಮೇ ಭಕ್ತೋ ಸೆ ಮಿಲ್ ಕೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿ ಪೂರಿ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಥೆ ತೋ ಭಕ್ತ ಪಹಲೆ ಸೆ ಚಲೇ ಗಯೆ ಥೆ. ಬಡೆ ಉತ್ಕಂಠತಾ ಸೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಥಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೋ ಇಸ್ಲೇ ಜಲ್ದಿ ಸೆ ಜಲ್ದಿ ವೋ ಪೂರಿ ಜಾ ರಹೆ ಥೆ. ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪುರ ಮೇ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ದೇವಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಆಯಿ. ಸ್ವಪ್ನ ಉನ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಜೊ ಮೇರಿ ಜೊ ಲೀಲಾಯೆ ಹೇ ವೋ ಅಲಗ್ ಗ್ರಂಥ ಮೇ ಅಲಗ್ ರಚನಾ ಕರೋ. ವೃಂದಾವನ್ ಲೀಲಾ ಔರ್ ವ್ರಜ ಕಿ ಜೋ ಲೀಲಾ ವೃಂದಾವನ್ ಕಿ ಜೋ ಲೀಲಾ ಹೇ ಔರ್ ದ್ವಾರಕಾ ಕಿ ಲೀಲಾ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಅಲಗ್ ರಖೋ. ಮೇ ಪೂರ್ಣ ತರಿಕೆ ಸೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೂಂಗಿ ಕಿ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪ ಮೇ ತುಮಹಾರಾ ಗ್ರಂಥ ಜೊ ಹೇ ವೋ ಪೂರ್ಣ ಹೋಗಾ. ವೈಸೆ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಆಕಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೋ ಕಹಾ. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಪಹುಂಚೆ. ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಮೇ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೆ ಯಹಾಂ ರುಕೆ ತೋ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ರೋಜ್ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ರೋಜ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ. ತೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೋ ದೇಖ್ ಕೆ ಬಡೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ಗಯೆ ಆಲಿಂಗನ್ ಕಿಯೆ. ಔರ್ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಅಗಲೆ ದಿನ ಜಬ್ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ಲೇಕೆ ಸಾರೇ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ. ಸಾರೇ ಭಕ್ತ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕಿಯಾ. ಯೇ ಸಬ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಹಮ್ನೆ ಏಕ್ ದಿನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಬ್ ರಥಯಾತ್ರಾ ಕಾ ಸಮಯ ಆಯಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಗುಂಡೀಚಾ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೋತಾ ಹೇ. ಗುಂಡೀಚಾ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ ಆಯಿ ತೋಟಾ ಮೇ ಪ್ರಸಾದ ವಗೈರ ಸಬ್ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ್ ಛೋಡ್ ಕೆ ಏಕ್ ಕದಮ್ ಭೀ ಆಗೇ ನಹಿ ಜಾತೆ. ಇಸ್ಲೇ ತುಮ್ ಜೊ ಲೀಲಾ ರಚನಾ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ವ್ರಜೇಂದ್ರನಂದನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಲೀಲಾ ಕಾ ಗ್ರಂಥ ಅಲಗ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಔರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾ ಔರ್ ದ್ವಾರಕಾ ಕಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಉನ್ಕಿ ಲೀಲಾ ಅಲಗ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಇಸ್ಲೇ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ನೆ ದೋ ಗ್ರಂಥೋ ರಚನಾ ಕಿಯಾ. ಯೇ ಲೀಲಾಂ ಕಿ ಪರ ಆಧಾರಿತ ಹೋತೆ ಹುಯೆ ನಾಟಕ ಇಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಹೇ ವಿದಗ್ಧ ಮಾಧವ್ ಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಜೋ ವ್ರಜ ಲೀಲಾಂ ಕೋ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೇ. दूसरा है ललित माधव, जो कृष्ण के द्वारका लीलाओं को वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है। तो रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार ऐसे चैतन्य महाप्रभु से रोज ऐसा मिलते थे या इष्ट गोष्ठी करते थे। जब रथ यात्रा आई, रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा गुह्यतम एक श्लोक को उच्चारण कर रहे थे। ये श्लोक वैसे देखा जाए जो एक साधारण सी एक लौकिक नाटिका से ये ली गई है, जहाँ एक प्रेमिका अपनी प्रेयसी से वो एक कुछ वैसे प्रेम के आदान प्रदान करते हुए कुछ वाक्यों को उच्चारण करती हैं। ये वाक्यों को चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण कर रहे थे बड़े भाव से। तब ये सुन के सारे लोग जो हैं चकित हो गए। ये श्लोक का अर्थ केवल सऊद दामोदर को मालूम था। तो जब रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक को सुना, तुरंत वो हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे उनके साथ में गए, उधर एक श्लोक की रचना किए। तो कल हम ये दो श्लोकों को हमने चर्चा किया था, जो चैतन्य महाप्रभु उच्चारण किए श्लोक, उस श्लोक गुह्यता उसका अर्थ को वर्णन करने वाले रूप गोस्वामी पाद ने और एक श्लोक रचना किया। ये दो श्लोकों को हमने चर्चा किया था कल, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को उच्चारण करते हैं। यह कौमार हरस एव वरस तायेव चित्र कपास ते चोन्मिलिता मालति सौहृद प्रारुद्ध कदम्बा नीला सा चैवांसि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोदसि वेतसि तरुतले चेतस्समुत्कंठते। मेरे चित्रा में बड़ी समुत्कंठा है आपसे मिलने की, लेकिन इधर नहीं मिलना है, गांव में जाके जहाँ रेवा नदी बहती है, जहाँ उधर तरु तले बहुत सारे वृक्ष हैं और बहुत सारे तरु लताएँ हैं, उधर जाके हम मिलेंगे। उसी बात को श्री रूप गोस्वामी पाद व्यक्त करते हुए और एक श्लोक की रचना करते हैं, जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसकी वजह से हम रूप गोस्वामी को प्रणाम मंत्र में श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन को जानने वाले हैं, वैसे करके हम प्रणाम मंत्र उच्चारण करते, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक रचना किया था। प्रिय सोयम कृष्ण सचरि कुरु क्षेत्र मिलितस तथाहम सरादात दिदमुभयो संगम सुखम तथाप्यंत केला मधुर मुरली पंचमजुषे मनो मे कालिंदी पुरीन विपिनया स्पृह्यति। ये श्लोक उच्चारण किया जहाँ राधा रानी की भाव में, जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण का मुलाकात हुआ, कृष्ण से मुलाकात हुआ, राधा रानी ने उनको खींचते हुए लेके गए व्रज वृंदावन। तो ये जो श्लोक है राधा रानी के द्वारा उच्चारण किया गया है। राधा रानी क्या कहते हैं, तुम वही कृष्ण हो तो मैं वही राधा रानी हूँ, लेकिन हमारा मुलाकात हुआ कुरुक्षेत्र में, भले तुम वही कृष्ण हो तो मैं वही राधा रानी, लेकिन फिर भी वो जो आनंद है वो इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर हाथी है, घोड़ा है, आपका वेश भी ठीक नहीं है, अन्य वेश है, तो हम चलेंगे वृंदावन। इसलिए तथापि अंत केला मधुर मुरली, हम मैं वही हूँ, वही आप वही कृष्ण जो हम युवावस्था में मिले थे अभी वही मिल रहे हैं, बचपन में मिले थे वही अभी दोनों हैं, लेकिन फिर भी क्या है, तथापि होने पर भी वो रस आस्वादन नहीं हो रहा है। इसलिए हमको जाना है जहाँ आपके पास मुरली है पंचम जुषाम, जो पांचवें नोट में जो बजाते हो, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनिया स्पृह्यति, कालिंदी तट में उधर जाके हम रास करेंगे करके राधा रानी खींच के लेके जाती है। ये रथ यात्रा का कोई रहस्य यही है, कृष्ण को गोपियाँ लेके जा रही है कहाँ से, कुरुक्षेत्र यानी राजा की भाव ऐश्वरी भाव से माधुरी की ओर खींच के लेके जाना, इस प्रतिक्रिया को रथ यात्रा कहा जाता है। तो रथ यात्रा के समय भागवत में वर्णन हुआ है किस प्रकार कुरुक्षेत्र में जो दोनों को मिलन हुआ। कल हमने ये भागवत का जो प्रसिद्ध श्लोक है जहाँ गोपियाँ कृष्ण को खींचते हुए वृंदावन लेके जाती हैं, बाहर से बड़ा नम्रता से व्यक्त करती है लेकिन अंदर बड़े क्रोध से वर्णन करती हैं कृष्ण को, या डांटती हैं, डांटते हुए कृष्ण को लेके जाती हैं, वो श्लोक को भी हमने चर्चा किया। आहुश्चते नलिनाभदारविंदम, ये कुरुक्षेत्र में कृष्ण और गोपियों का मिलन जो है, वृंदावन वासियों का मिलन है, उस अध्याय के अंतर्गत आखिरी श्लोक है ये। इस श्लोक को भी हमने कल चर्चा किया। बाद में एक दिन रूप गोस्वामी से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, एक दिन रूप गोस्वामी पाद लिख रहे थे। जब लिख रहे थे
फिर महाप्रभु ने पूछा क्या लिख रहे हो जरा दिखाओ। तुरंत उन्होंने पूरा वो पत्ता खोल के देखा चैतन्य महाप्रभु ने, वो देख के तुरंत महाप्रभु ने देखा कि कितना सुंदर हैंड राइटिंग है, देखो चैतन्य महाप्रभु का जो हैंड राइटिंग है इतना अद्भुत था। महाप्रभु ने कहा कि आपके जो हैंड राइटिंग जो है वो आपकी जो लिपि है इतना सुंदर है कि मोतियों की धारा जैसा है, जैसे मोतियों को एक साथ में ऐसे एक के बाद एक रखो तो उस प्रकार का है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा क्या लिखा है ज़रा देखो, तो एक श्लोक पढ़े, एक श्लोक पढ़े, बड़ा अद्भुत श्लोक था। ये श्लोक था, हमने इसके ऊपर भी चर्चा किया, नाम का महिमा को वर्णन करने वाला श्लोक है। तुंडे तंड विनीरतिम वितनुते तुंडावली लभ्यते कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णारुभ्यते स्पृहान् चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जानी यो नो जाने जनिते कियाब्धिरमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। कल हमने श्लोक का भी चर्चा किया जहाँ चैतन्य माँ इस श्लोक का अर्थ ये है कृष्णेति वर्णद्वयी, दो कृष्ण के दो वर्ण हैं कृष्ण और ना, न जाने जनिता कियाब्धिर, न जाने करते मैं जानता नहीं हूँ। इसका ये जो कृष्ण अमृत का कृष्णेति अमृत का जो सागर है, ये कृष्ण शब्द का ये दो वर्ण में कितना बड़ा सागर है इसका, कितना गहराई अमृत का वो मैं नहीं जानता हूँ। इतना बड़ा सागर है अमृत का कि मैं जान ही नहीं पाता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस कृष्ण नाम को सुनता हूँ या उच्चारण करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हज़ारों जीवा चाहिए, तुंडे मतलब हज़ारों जीवें चाहिए। जब ये उच्चारण करता हूँ तो मेरे ये कृष्ण का नाम कारण में प्रवेश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्णार्बुदे अरबों कर्ण चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। जब वो कर्णों से प्रवेश करके मेरे चित्त में प्रवेश करता है नाम, तब क्या है चेत प्रांगण संगिनीम विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सर्वेन्द्रियाणाम सारे इंद्रियों की जो कृति है कार्य है विजयते यानी स्तब्ध हो जाता है सारे इंद्रियां, केवल मेरा पूरा चेतना जो है इंद्रियों के प्रति इंद्रिय कार्यकलापों के प्रति इंद्रिय विषय के प्रति कहीं पता नहीं लगता, केवल मेरा चित्त हरिनाम के प्रति ही आसक्त हो जाता है। तो ये कृष्ण नाम को मधुरमा को वर्णन करते हैं। और जैसे श्लोक सुने तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कितना अद्भुत है श्लोक, मैंने अनेकों शास्त्रों में अनेकों साधुओं से हरिनाम की महिमा सुना है लेकिन ये इस प्रकार का जो हरिनाम का महिमा है मैं कहीं नहीं सुना है। वैसे रूप गोस्वामी पाद के विषय में चर्चा किया कि इस प्रकार जब रामानंद राय और सारे जितने भी अंतरंगी भक्त है स्वरूप दामोदर सब आए आके रूप गोस्वामी पाद से थोड़ा इंटरव्यू जैसा लेने लगे, रामानंद राय बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे और रूप गोस्वामी पाद उसका जवाब दे रहे थे। जो रूप गोस्वामी ने जवाब दिया वो सारा जवाब जो विदग्ध माधव नामक ग्रंथ में सब रचना किया गया है, खास करके कृष्ण तत्व की जो रस तत्व की गहराई है वो सारे गहराइयों को स्पर्श करते रूप गोस्वामी इस ग्रंथ में जिसका नाम है विदग्ध माधव। तो रामानंद राय सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं महाप्रभु ये रूप गोस्वामी पाद का ये जो इस प्रकार का जो कह रहे हैं वो साधारण चीज़ नहीं है, आपके कृपा है तभी वो कह पा रहे हैं। आपने आप प्रयाग में मिले थे जब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आलिंगन किया था तब रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरा कृपा प्रदान किया था। रामानंद राय बाद में कहते हैं महाप्रभु ये आपकी लीला है, अभी आपने मेरे मुख के द्वारा जो कहलवाया था कहाँ गोदावरी तट में कोवूर में राजमंड्री के पास में आपने मेरे मुख के द्वारा जो भी कहलवाया अभी रूप गोस्वामी के द्वारा आप लिखवा रहे हैं, ये सब महाप्रभु ही आपकी लीला है। वैसे बहुत सुंदर आदान प्रदान हुआ। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं कि अभी आप डोल यात्रा खत्म हो उसके बाद जाइए वृंदावन। रूप गोस्वामी जब वृंदावन पहुँचे तो रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी से भेंट हुआ, अनेकों दिव्य जो लीलाएँ हैं वो उधर हुआ, जीव गोस्वामी के साथ में हुआ। खास करके हम जीव गोस्वामी के विषय में चर्चा किए किस प्रकार जीव गोस्वामी पाद को दो बार रूप गोस्वामी ने निकाल दिया क्योंकि तर्क में ज़्यादा रुचि रखते थे जीव गोस्वामी, फिर भी सनातन गोस्वामी कृपा से रूप गोस्वामी का मिलन हुआ और रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी को दीक्षा दे के विग्रह का प्रदान किया जिसका नाम है श्री श्री राधा दामोदर विग्रह। हम अनेकों अनेक लीलाओं को चर्चा करते हुए एक लीला बड़ा प्रसिद्ध लीला है वो कहना हम भूल गए थे, एक भक्त ने हमको याद दिलाया तो सोचा ठीक है उसको बता दूँ। एक बार रूप गोस्वामी पाद वैसे बैठ के कृष्ण लीला का स्मरण हो रहा था। ये स्मरण जो है ज़बरदस्ती नहीं होता है, सिद्ध पुरुषों में, सिद्ध लोगों में, पार्षदों में ये स्मरण स्वाभाविक से होता है। तो कृष्ण लीला का स्मरण हो रहा था जहाँ श्रीमती राधा रानी के सारे सखियाँ पीछे से राधा रानी को सजा रही थी, उनका बाल जो है बना रहे थे, और सारे सब कुछ होने के बाद एक सखी ने श्रीमती राधा रानी को दिखाया, आईना दिखाया, और जैसे आईना दिखाया पीछे राधा रानी ने देखा बहुत सुंदर है लेकिन पीछे कौन है, कृष्ण है। एकदम देख के बहुत क्रोधित हो गए कृष्ण के ऊपर, थोड़ा लज्जित भी हो गए। तो ये जैसे चल रहा था उनके माइंड में रूप गोस्वामी पाद के मुख में भी हंसी आया, और सारे गोपियाँ जैसे हंस रहे थे रूप गोस्वामी पाद हंसने लगे, क्योंकि रूप गोस्वामी तो मंजरी हैं, वो लीला में सीधा प्रत्यक्ष खड़ी नहीं रहती बल्कि दूर से देख रही थी। तो ये नित्य सिद्ध देह में रूप गोस्वामी पाद तो रूप मंजरी हैं, तो दूर से हंस रहे तो ये भी हंस रहे, रूप गोस्वामी पाद हंसने लगे। तो उस समय एक ब्राह्मण आया था रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, या कुछ लोग बोलते वैसे ही जा रहे थे, वो थोड़ा सा लंगड़े से चल रहे थे। तब उनको बहुत खराब लगा, अरे ऐसा कैसे, रूप गोस्वामी पाद इतने महान वैष्णव हैं, मैं लंगड़ा रहा करके मुझे देख के हंस रहे क्या, उनको बहुत दुख लगा। तब अचानक रूप गोस्वामी पाद का ये जो लीला स्मरण है वो समाप्त हो गया। तो वो समझ रहे थे क्या क्यों समाप्त हुआ, क्या कारण है, मैंने कुछ अपराध किया है। लीला स्मरण तभी समाप्त होता है या कृष्ण कथा में रुचि तभी खत्म होता है जब मैंने अपराध किया हो, मैंने कोई ना कोई वैष्णव के प्रति अपराध किया है जाने अनजाने में। तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद के पास गए, तो श्रीपाद सनातन, इसका स्टोरी का अलग अलग वर्षन है तो मैं वो वर्षन बता रहा हूँ जो व्रज में बड़ा प्रचलित है। तो ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने कहा ये लीला स्मरण जो है खंडन होना ये निश्चित रूप में वैष्णव अपराध की वजह से ही होगा, और कोई कारण नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी का अपराध हुआ है। तो किसका अपराध हुआ है कैसे पता करें। तब सनातन गोस्वामी ने कहा जिसके प्रति अपराध किया होगा ना वो निश्चित रूप में आपके निमंत्रण में नहीं आएगा। अगर आप निमंत्रण दो कि नहीं आएगा, तो रूप गोस्वामी पाद को सनातन गोस्वामी एक बड़ा सा फीस्ट का आयोजन करो, आप निमंत्रण दो सारे व्रज के ब्राह्मणों को, व्रजवासियों को निमंत्रण दो। तो रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा सा आयोजन किया ब्राह्मणों का और व्रजवासियों का, अच्छी तरह से एक भोजन का निमंत्रण दिया। तो बहुत सारे लोग, रूप गोस्वामी आयोजन कर रहे थे, सब लोग आए तो सब लोग आए लेकिन एक ब्राह्मण नहीं आया। तब पता लगा रूप गोस्वामी पाद का, हाँ ये इनके प्रति कुछ अपराध हुआ है। तब रूप गोस्वामी पाद उनके पास गए, प्रणाम किए, और वो भी प्रणाम किए, बोलने लगे कि क्या है? मैंने आपके प्रति कुछ अपराध किया था लगता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, आप तो महान वैष्णव हैं, लेकिन जब मैं जा रहा था, मैं तो थोड़ा सा लंगड़ाता हूँ, मैं जा रहा था तो आप हंस रहे थे मुझे देख के। तब रूप गोस्वामी समझ गए, हाँ मैं लीला स्मरण में जो हंस रहा था ये जो चीज़ देख के उनको बुरा लग गया। तो रूप गोस्वामी ने जब एक बात कहा तुरंत तो ब्राह्मण जो है रूप गोस्वामी चरण में पड़ा और बहुत माफ़ी मांगा। उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैंने अपने प्रति अपराध किया करते, ऐसा इस प्रकार का बड़ा सुंदर लीला है रूप गोस्वामी पाद का भी। अभी रूप गोस्वामी के विषय में हमने बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा किया, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के विषय में जो भी चर्चा किया उसका ग्रंथ परिचय थोड़ा सा ना दूँ, क्योंकि जब तक ग्रंथ का परिचय नहीं दिया जाए तो आचार्यों की लीला का पूर्णता नहीं होता है। तो आज भक्तिनोद ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है ना, आविर्भाव दिवस है। तो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं ही रीजन्स इल हु सेज वैष्णवास डाई दाउ आर स्टिल लिविंग इन साउंड। वो कहता है वो लोग उनका तर्क ठीक नहीं है, उनका बुद्धि ठीक नहीं है जो कहते वैष्णव लोग जो है वो उनका मृत्यु होता है। क्यों, वैष्णव अभी भी जीवित है, किसमें, अपने शब्दों में जीवित है। इसलिए सबसे पहला हम रूप गोस्वामी पाद के कुछ ग्रंथों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको श्री प्रभुपाद ने कहा कि इट इज़ द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। वैसे तो मैनेजमेंट इस्कॉन संस्था को चलाने के लिए GBC ने लॉ बुक बनाया है द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए हैं, तो पता नहीं मैनेजमेंट के लिए डैमेजमेंट के लिए जिसी के लिए तो है वो एक बुक है, लेकिन वास्तविक लॉ बुक क्या है, हमारा लॉ बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। एक बार वैसे ही हमारा मंदिर में सेमिनार हो रहा था, इस्कॉन लॉब के ऊपर एक सेमिनार चल रहा था, बहुत सारे मैनेजर लोग आए थे, तब अनेकों अनेकों प्रश्नोत्तरी रिश्ता गोष्ठी हुआ। लास्ट में जो सेमिनार ले रहे थे ना, उन्होंने कहा कि इफ़ यू फॉलो द रियल लॉ बुक ऑफ इस्कॉन भक्ति रसामृत सिंधु यू डोंट रिक्वायर दिस लॉ बुक। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु जो वास्तविक लॉ बुक है इस्कॉन का, अगर वो कड़ाई से हर वक्त पालन करता है तो ये लॉ बुक की जरूरत ही नहीं है। तो अभी हम कड़ाई से पालन नहीं करते, इसलिए सब चाहिए, वो ऐसा है, ये है, वो है, बहुत सारा इसमें है। ठीक है, जो भी है, भक्ति रसामृत सिंधु इज अ रियल लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। जैसे हमारा देश का कानून है, तो उसी प्रकार हमारी संस्था का कानून क्या है, ये भक्ति रसामृत सिंधु है। इससे सारे भक्तों को भक्ति रसामृत सिंधु जानना बहुत आवश्यक है। अगर लॉ जाने बिना, कानून जाने बिना आप जिएंगे तो क्या होगा, आप कुछ कार्य करेंगे क्या होगा, आपको पकड़े जाएंगे, पुलिस आके पकड़ लेगा। उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु जाने बिना अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो क्या होगा, तो कोई ना कोई आके अपराध के बाद कोई होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं भक्ति करने से इतना आनंद मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, इतना साल से कर रहा हूँ आनंद क्यों नहीं मिलता है, तो कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ भक्ति में नहीं है, गड़बड़ हम उसको करने में है, हमारे में है। तो एक प्रकार का ठीक भक्ति नहीं करने का भी गलत परिणाम मिलता है। अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो कुछ पका रहे हो, अगर ठीक नहीं पकाओगे, भले वो रसगुल्ला क्यों ना हो, आप रसगुल्ला पकाने जा रहे हो, ठीक नहीं पकाओ तो क्या होगा, भले उसको बोलोगे आप रसगुल्ला, लेकिन वो रसगुल्ला है नहीं। उसी प्रकार भक्ति भी ऐसा है, अगर उसको ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो उसको भक्ति नहीं माना जाता है, तो इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु जानना बहुत ज़रूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु के बाद एक ग्रंथ को रचना की है, ललित माधव, आपको मालूम है। तो उस ललित माधव के शुरुआत में ही थोड़ा सा राधा कृष्ण का जो विरह का वर्णन रूप गोस्वामी पद करते हैं, क्योंकि ललित माधव तो कृष्ण के जो वो लीलाएं हैं कहाँ का, द्वारका और मथुरा की लीलाएं हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन के शुरुआत में कृष्ण वृंदावन छोड़ के जब मथुरा की ओर जाते हैं, उस समय गोपियों का जो स्थिति है, उस राधारानी का स्थिति है, उसका वर्णन थोड़ा सा किया गया है ललित माधव में। और एक बार ललित माधव रचना करके रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए आए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी से जब मिलने के लिए आए रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने देखा, वो देख के उन्होंने कहा कि मैं उसको पढ़ूंगा। रूप गोस्वामी पाद निकल चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसको पढ़ने गए, तुरंत उधर वर्णन है राधा रानी का विरह का वर्णन है, और कृष्ण जो है कृष्ण के विरह में सारी गोपियाँ रो रही है, राधा रानी रो रही है, ये खाली स्मरण करने मात्र से रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लग गए। कुछ खाने कुछ पीने रहे, निरंतर ग्रंथ को लेके राधे राधे नाम उच्चारण कर रहे हैं, और सारे ब्रजवासी राधा कुंड में, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में थे, वो सब लोग परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा जब से ये ग्रंथ आया है वो हमसे, हमको रोज 3-4 घंटे प्रवचन देते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी वैष्णवों को प्रवचन नहीं मिल रहा है, वो सोचे अभी रूप गोस्वामी को बताना पड़ेगा। तब रूप गोस्वामी समझ गए रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम कुछ भी बोलेंगे तो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूरा अभी अपनी चेतना पूर्ण तरीके से विरह भाव में मग्न है। तब रूप गोस्वामी पाद ने और एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है दान केली कौमुदी। दान केली कौमुदी एक राधा कृष्ण लीला का मिलन का लीलाएँ हैं। खास करके आप जब बरसाना जाओगे उधर जो साकरी खोट में जो होता है वो लीला है, और धान घाटी में जो लीला होता है, ये दो जगह ये दान केली कौमुदी का लीला है। वैसे दान केली के ऊपर रघुनाथ दास गोस्वामी ने वापस और एक ग्रंथ की रचना किया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने दान केली कौमुदी की रचना किया। दान केली कौमुदी रचना करके वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए, बोला कि मैंने और एक ग्रंथ को रचना की, ये दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मैं करना चाहता हूँ, एक ग्रंथ को दीजिए। रघुनाथ दास ने ठेका ले लिया, लेने के बाद दान केली कौमुदी पढ़ने लगे, प्रफुल्लित हो गया उनका मन, वाह राधा कृष्ण का मिलन हो गया, अभी एकदम आनंद से रोज हरिनाम करते थे, भक्तों से बैठ के चर्चा करते थे, फिर वापस रघुनाथ दास गोस्वामी फॉर्म में आ गए। तो बाद में और एक ग्रंथ का रचना किया, वो है, मैं भजनों की वर्णन नहीं कर रहा हूँ, भजन स्तव की दो मतलब बहुत लंबा लिस्ट है, उसका उस सारे भजन और स्तव के विषय में एक संक्षिप्त में कहूँगा। एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है गोविंद विरुदावली। गोविंद विरुदावली बड़े अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत चीज़ है। ये गोविंद विरदावली ऐसा है, आप सबको मालूम है राधा गोविंद जी के मंदिर में रूप गोस्वामी रोज जाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा राधा गोविंद जी मंदिर में एक ब्राह्मण था, दक्षिणा ब्राह्मण था लगता है, बड़े सुंदर वेदों को उच्चारण कर रहा था, वैदिक मंत्रों को, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण कर रहा था। और ये सामवेद के जो मंत्र हैं वो ऐसा नहीं था कि कृष्ण की स्तुति करने वाला, वो कोई देवता का कोई ऐसे स्तुति करने वाला कुछ मंत्र थे, वो सीधा ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण को स्तुति करने वाले थे, कृष्ण की महिमा को वर्णन करने वाले नहीं थे। जैसे वेदों में तो अनेक देवताओं का भी स्तुति करने वाले मंत्र हैं। तो रूप गोस्वामी ने दूर से देखा ये तो ब्राह्मण बड़े सुंदर तरीके से वेदों को उच्चारण कर रहा है, और राधा गोविंद जी के गले में जो हार है वो नीचे गिरा। और रूप गोस्वामी पास समझ पाए गोविंद जी इस ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न है। तब रूप गोस्वामी पास कन्फ्यूज हो गए, तो विचलित हो गए। तो सब ब्राह्मण चले जाने के बाद, समाप्त होने के बाद, रूप गोविंद जी के पास जाके पूछे, हे गोविंद जी, आप केवल भक्ति से प्रसन्न होते ऐसे शास्त्र कहता है, और भक्त से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और आपकी स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मण उच्चारण कर रहा था ये आपकी स्तुतियां तो थी नहीं, वेदों के कुछ देवी देवता को स्तुति करने वाला थी, इससे आप कैसे प्रसन्न हुए? तो गोविंद जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो वो अच्छा गा रहा था। मैं भी एक व्यक्ति हूँ ना, मुझे संगीत बहुत पसंद है, छंद बहुत पसंद है, जो भी श्लोकों को अच्छा उच्चारण करता है मुझे अच्छा लगता है, चाहे कोई भी श्लोक क्यों ना हो, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ ना। अंततः अभी भी होता है ना कि आप भक्त है, रास्ते में जा रहे हो, भले ही वो भक्ति का कोई संबंध नहीं है, अच्छा म्यूजिक बजाता है, बोलते हैं अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, है कि नहीं? तो भगवान को भी एक, कोई ऐसा नहीं बोल सकते वो भगवान एक शास्त्रों से बंधन है, हम शास्त्रों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान शास्त्रों से बंधे नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो ही कैन लाइक एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, स्वतंत्र है। रूप गोस्वामी ने कहा, ठीक है, आपको संगीत और छंद पसंद है ना, छंद कौस्तुभ, छंद के अनुसार जो अलंकार इत्यादि पसंद है ना, ठीक है, मैं आपको इस कितने भी अलंकार हैं, कितने भी छंद है वेदों में संस्कृत भाषा में, वो सारे अलंकार और छंद से युक्त मैं एक ग्रंथ का रचना करता हूँ, तो उसका नाम है गोविंद विरदावली। इसमें सारे प्रकार के अलंकार, 72 प्रकार के अलंकार हैं और अनेकों अनेकों प्रकार के छंद हैं, वो सारे छंदों को इस्तेमाल करते हुए भगवान को पुकारने वाली एक ग्रंथ का रचना किया। कृष्ण का पुकार है ये, इसको विरदावली मतलब दो अर्थ है विरदावली में, एक है कृष्ण का पुकारना, दूसरा अर्थ है गिफ्ट। असत में इधर विरदावली का अर्थ इधर लेना चाहिए गिफ्ट। रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद जी को एक गिफ्ट दिया, एक ग्रंथ का गिफ्ट दिया जिसका नाम है गोविंद विरदावली, जिसके अंदर बहुत अद्भुत अद्भुत छंद है। अस्तित्व में कुछ पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर बात है, मैं मद्रास गया था, उधर एक बड़े प्रसिद्ध श्री वैष्णव ब्राह्मण हैं, बड़े प्रसिद्ध है, वो बहुत सुंदर उच्चारण करते हैं, उनके द्वारा हमने ये गोविंद विरदावली को उच्चारण कराया। तो उच्चारण कराने का हमने रिकॉर्डिंग किया, शायद कुछ आपके पास भी आया होगा, स्तवमाला आया होगा ना, उसके अंदर गोविंद विरदावली उच्चारण किया हुआ है, तो कुछ कॉपीज है ना आपके पास, यू हैड सम कॉपीज आई सपोज। हाँ, तो ये जो गोविंद विरदावली हैं, तो गाने के बाद, वो तो ब्राह्मण हैं, वो तो बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा, उनके श्री संप्रदाय के एक आचार्य है वेदांत देसिकर करके, जो वड़कड़े संप्रदाय वाले, उसको जैसे हमारे लिए प्रभुपाद जी है उनके लिए वो है रामानुजाचार्य के बाद, जो वेदांत देशिकर को सबसे प्रिय मानते हैं। तो उन्होंने कहा, गोविंद विरदावली उच्चारण करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अनेकों अनेकों ग्रंथों को पढ़ा हूँ संस्कृत भाषा में, अगर कोई व्यक्ति, उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति वेदांत देशिकर के बाद जो संस्कृत के सारे ग्रामर की बातों को ध्यान में रखते हुए, अलंकार को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसा ग्रंथ की रचना किया है, वो है गोविंद विरदावली रूप गोस्वामी पाद के द्वारा है। तब मैंने कहा कि मुझे तो आप उच्चारण तो कर दिए, मुझे उच्चारण करना भी नहीं आता है, मैंने उनसे पूछा आप उसको तो कुछ अर्थ बताइए। तब उन्होंने ऐसे तो संस्कृत तो आता है, उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत सारे चीज़ों का अर्थ इतना जानता नहीं, लेकिन एक श्लोक को अर्थ सुनाया, इतना अद्भुत तरीके से सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लिपि जो है वो तभी कोई व्यक्ति लिख सकता है जब स्वयं भगवान उनकी जिह्वा के ऊपर खड़ा हो, ये उनका साक्षात्कार है। खाली उन्होंने खाली देखते देखते उच्चारण किया, तब मैं एहसास कर मैं सोचने लगा देखिए हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने इतने बड़े रत्न है हमारे पास लेकिन हमको मालूम भी नहीं है ऐसे ऐसा चीज़ है करके। सो सच ए वंडरफुल थिंग। तो ये गोविंद बिरदावली है। बाद में हम सदूत का अर्थ है कि मैसेज, गोपियाँ कृष्ण को मैसेज भेजती हैं और कृष्ण जो है वो गोपियों को मैसेज भेजते हैं, ये हम सदूता है। ऐसे पे चिट्ठी जैसा है, कन्वर्जेशन जैसा है। और लघु भागवान भागवतामृत है और मथुरा महात्म्य है, नवदीप स्तुति है और अनेकों अनेकों इस प्रकार के ग्रंथों का रचना किया। और उद्धव संदेश है, उज्जल नीलमणि है, तो ये सब रूप गोस्वामी पाद के द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है। उसके साथ साथ में पद्यावली और स्तवमाला, ये स्तवमाला में रूप गोस्वामी पाद ने अनेकों अनेकों अष्टकम को रचना किया। ये अष्टकम जैसे चैतन्य अष्टकम, तीन प्रकार के चैतन्य अष्टकम हैं, और वृंदावनाष्टकम है, राधाष्टकम है, गोवर्धनोद्धारणम है, गोवर्धनाष्टकम है, अनेकों अनेकों अष्टक हैं, स्तुतियाँ हैं, स्तव हैं। तो इतना सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी ने हम सबको ये हमारे मन, हमारी जितनी बुद्धि हैं, क्षमता हैं, वो सब कृष्ण में लगाने के लिए ये ग्रंथों की रचना किया है। असल में जब तक हम ये हमारे मन को, बुद्धि को इन ग्रंथों में नहीं लगाएंगे, तब तक जो है चित्त वृत्ति शांत नहीं होगा, हमारा चित्त जो है इधर उधर हमेशा भागता रहेगा। इसलिए इन ग्रंथों को कभी मौका मिले कम से कम पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने का या सुनने का मौका नहीं मिलता, कम से कम उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो इसके बाद हम थोड़ा जीव गोस्वामी के विषय में, हम कल चर्चा किया था, जीव गोस्वामी पाद जब वृंदावन आए, वृंदावन आने के बाद रूप गोस्वामी से विग्रह प्राप्त करने के बाद, रूप सनातन का तिरोभाव होने के बाद, जीव गोस्वामी पाद पूरा जो वैष्णव साम्राज्य है उसका एक प्रकार के अधिपति बन गए। भले ही बहुत छोटे उम्र के थे, उनसे भी वरिष्ठ उम्र में वरिष्ठ वैष्णव थे, इन सब लोगों ने कहा जीव गोस्वामी को बनाइए। तो जीव गोस्वामी पाद राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने सबसे पहला क्या किया, सारे जितने भी वैष्णव ग्रंथ है, रूप सनातन के लिखा हुआ वैष्णव ग्रंथ है, उन्हें एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाया, सारे ग्रंथों को इकट्ठा करके उन्होंने व्यवस्था बनाया। उस समय जानवा देवी ने रूप गोस्वामी पाद को एक चिट्ठी लिखी, ने कहा देखो वैसे तो रूप सनातन ने अनेकों अनेकों ग्रंथों को रचना किया है, बंगाल और उड़ीसा में कोई प्रचार करने के लिए नहीं है, इसलिए आप प्रचार करने के लिए इन ग्रंथों को भेजिए और कुछ भक्तों को भेजिए जो प्रचार कर सकते हैं। उस समय तीन प्रसिद्ध भक्त अपने आप से भगवान की योजना से आए। एक है श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य वो गोपाल भट्ट गोस्वामी संततः दीक्षा लिए, उनका स्टोरी तो कुछ अलग है, बाद में बताएंगे। तो श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लिया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा लेते हुए तुरंत उन्होंने कहा जीव गोस्वामी पाद के पास जाओ और शिक्षा लो। तो कुछ समय के बाद लोकनाथ गोस्वामी ने दीक्षा दिया नरोत्तमदास ठाकुर को। नरोत्तमदास ठाकुर ये आपको मालूम है, चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल गए थे उस समय उन्होंने अपना शरीर में जो कृष्ण प्रेम है उन्होंने एक नदी में छोड़ा था अजान। तो ये नदी में जब नरोत्तमदास ठाकुर नहाए, वैसे जन्मतः नरोत्तमदास ठाकुर जो है काले रंग के थे थोड़ा सा, और जैसे उस नदी में नहाए चैतन्य महाप्रभु का ये जो छोड़ा हुआ नदी में जो कृष्ण प्रेम है अपना शरीर में आ गया, वो पूरा गोरे रूप में आ गए नरोत्तमदास ठाकुर। यानी नरोत्तम करके बोलते थे, किसी को मालूम नहीं पड़ता कौन नरोत्तम कौन है। तो ये नरोत्तमदास ठाकुर जब आए वृंदावन, लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा, लोकनाथ गोस्वामी ने कहा जाओ तुम जीव गोस्वामी शिक्षा ग्रहण करो। बाद में श्रीनिवास आचार्य, लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तमदास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, श्यामानंद पंडित का नाम था दुखी कृष्णदास पहले, बाद में श्यामानंद पड़ा नाम। आप सबको मालूम है जब वृंदावन जाओगे तो श्यामानंद, श्याम सुंदर मंदिर में श्यामानंद पंडित का भी भजन कुटीर इत्यादि हैं, और राधा रानी का झाड़ू मारते सेवा को उनका झाड़ू मारते थे और राधा रानी का कृपा प्राप्त हुआ। तो ये श्यामानंद पंडित भी दीक्षा हृदय तेजन से लिया था। बाद में श्यामानंद पंडित भी वो इनका जीव गोस्वामी पाद का शिष्य बने, जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा लिए। तो जीव गोस्वामी पाद ने इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया। सबसे पहला जो ट्रेनिंग स्कूल है, वैसे तो रूप सनातन ग्रंथों को रचना करते थे, अपने भक्ति में भजन में मग्न थे, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ये सबसे पहला हमारा गौड़ीय वैष्णव प्रचार के लिए एक टेंपल प्रेसिडेंट का रूप धारण किए। वैसे तो अकेले बैठ के भजन करना, ग्रंथ लिखना, वो एक तरीका है, लेकिन एक व्यवस्था बनाना, सबको बुलाना, शिक्षा प्रदान करना, हर चीज़ को व्यवस्थित करना, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। अकेले जो हैं तो वो करना तो हो जाता है, रूप सनातन ने वो कर दिया, लेकिन जीव गोस्वामी पाद बड़े एक्सपर्ट थे। ऐसा कहा जाता है जीव गोस्वामी पाद केवल शास्त्रों में ही उनका निपुणता नहीं था, बल्कि वो बड़े अच्छे मैनेजर भी थे। उस समय जितने भी मंदिरें थी गोस्वामियों के द्वारा स्थापित मंदिर हैं, राधा कुंड हैं, जितने भी हैं, उन सब का कागज़ पत्र जो है उनको व्यवस्थित किया। हर जगह जीव गोस्वामी जाते थे, उधर के जो ज़मीन के मालिक थे उनको बोलते थे अभी रूप गोस्वामी का मंदिर है इधर, कागज़ बराबर बनाओ, साइन करो, पूरा अच्छी तरीके से व्यवस्था किया। अभी भी जो हमारे मंदिरें हैं, उस मंदिर के जो ओरिजिनल जो कागज़ें हैं, अगर पीछे पीछे जाएंगे कहाँ से सब, किसके द्वारा सब कुछ हुआ है, किसने सब जब्त करके बराबर बनाए हैं, व्यवस्था बनाया है, वो पूरा नाम जीव गोस्वामी के ऊपर जाता है। अभी भी इवन टिल टुडे, खास करके जो राधा कुंड का जो जगह है वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट में था जीव गोस्वामी के समय में। कुछ उधर के लोकल लोग बताते थे नहीं ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है, लेकिन जीव गोस्वामी जाके सब लोगों को बुला के, पंचायत बुला के अच्छी तरह से सब व्यवस्था उन्होंने किया। और सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद ने शुरू किया। तो जीव गोस्वामी पाद इन तीनों को शिक्षा दिया, और जैसे जानवा देवी का ये चिट्ठी आया तो उस समय वृंदावन में बहुत सारे ब्राह्मण नहीं थे जो लोग इन सारे गोस्वामियों के ग्रंथों को वो कॉपी कर सके और अलग अलग प्रकार के ग्रंथ बना सके। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों को, नृत्यनदास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, इन तीनों को सारे ग्रंथों को सौंप के एक बड़ा सा बैलगाड़ी में डाल के उनको भेजा, आप जाओ बंगाल और उड़ीसा जाके इन ग्रंथों को वितरण करो और इन ग्रंथों को प्रचार करो। तो सबसे पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी है, जैसे बस पार्टी निकलता है ना, उसको निकाली थी कौन, जीव गोस्वामी पाद ने, सारे वैष्णव के ग्रंथ थे उसके अंदर। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद के भी अनेकों प्रसिद्ध लीलाएँ हैं, और हम उनके थोड़ा सा लिखे गए ग्रंथों को हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जीव गोस्वामी पाद के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है जीव गोस्वामी पाद ने 100,000 श्लोकों को रचना किया, 100,000 वर्सेस रूप गोस्वामी पाद ने, और जीव गोस्वामी पाद ने 400,000 श्लोकों को रचना किया, 400,000 वर्सेस। यानी देखा जाए व्यासदेव ने जितने श्लोकों को रचना किया उससे अधिक श्लोकों को केवल जीव गोस्वामी पाद ने रचना किया। ये जीव गोस्वामी का महिमा है। पहली बार ऐसे तो नाम ऐसे जानते थे कि जीव गोस्वामी के ज़्यादा जानकारी नहीं था। शुरुआत में जब इस्कॉन के संपर्क में आए थे और भगवद गीता वगैरह पढ़ते थे, तो उस समय एक आध दो साल हुआ रहेगा, उस समय अभी पढ़ाई करते थे, अभी ज्वाइन भी नहीं किया था। तो एक बार ऐसा हुआ मद्रास जाना पड़ा मुझे, तुम्हारे बड़े दूर के रिश्तेदार कोई हैं, वो मद्रास यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के वो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है। तो वैसे बातचीत में मैंने कहा इस्कॉन में जाता हूँ, वो है, उन्होंने पूछा क्या है आपका फिलासफी, ये वो चर्चा करते करते वैसी बात आई, कुछ गोस्वामी के विषय में बात आई। तब मैंने कहा कि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वैसे उनको इनका नाम नहीं मालूम था। तो मैं तुरंत आखिरी में उनका जीव गोस्वामी बोला, तो मैंने कहा रुको, कौन जीव गोस्वामी के संप्रदाय में हो? तो मैंने कहा हाँ, जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी में से एक है। तूने कहा अच्छा 6 है क्या ऐसा, तो जीव गोस्वामी जैसे, तब वो तुरंत इतना आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जीव गोस्वामी के जो संदर्भ हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तूने कहा बाद में अंत में उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे बड़ा सौभाग्य से एक कॉपी मिला, तो मैं कुछ पहले के श्लोकों को पढ़ते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं वैसे पीएचडी सब हो गया था उनका, मतलब कि और रिसर्च करके उसके पेपर पब्लिश करना चाहता हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो। मैंने कहा मैं बहुत नया हूँ, कुछ नहीं मालूम मुझे। तब उन्होंने कहा बस उनका रिसर्च करते हुए खाली 3-4 महीना हुआ, तो वैसे कोई इस प्रकार के एकदम डेडिकेटेड भक्त नहीं है, वैष्णव है, कुछ कुछ पूजा वगैरह इत्यादि कर लेते, लेकिन बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो उन्होंने कहा इस प्रकार का जो जीव गोस्वामी पाद ने जिस प्रकार जो फिलॉसफी को प्रस्तुत किया है शंकराचार्य में भी नहीं किया है, खास करके दक्षिण भारत में शंकराचार्य बड़े प्रसिद्ध है। कौन है शंकर, मतलब बड़े उनके कुछ कोई नहीं बोल सकता। ने कहा आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, इतना क्लियर कट, इतना अच्छी तरह से किया है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो हमारे गौड़ीय समाज के जो नहीं है, वैसे गौड़िया तो सब मानते हैं जीव गोस्वामी को प्रणाम कर देते हैं, अलग बात। जो बाहर से भी लोग जब इन आचार्यों के ग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो भी खाली थोड़ा सा उनका झलक होने मात्र में, झलक मिलने मात्र से ही वो इतना उनको प्रशंसा करते हैं, इतना है हमारे जीव गोस्वामी आचार्यों की महिमा। तो जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथों के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जीव गोस्वामी का पाद के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है वो प्रसिद्ध ग्रंथ है जीव गोस्वामी पाद का, वो है संदर्भ, षड संदर्भ। षड संदर्भ के नाम इस प्रकार हैं, तत्व संदर्भ और परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भगवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ये जो 6 संदर्भ हैं इसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा प्रस्तुत किया ताकि पहले की जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, कितने भी विद्वान हुए हैं, भविष्य में कितने भी विद्वान होंगे, वो कोई का हिम्मत भी नहीं होगा उसको खंडन करने की। कोई भी दार्शनिक कोई भी ग्रंथ को रचना करते हैं तुरंत कोई ना कोई उसके ऊपर टिप्पणी देता है, उसको खंडन करने का प्रयास करता है, लेकिन जीव गोस्वामी का संदर्भ ऐसे हैं आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया उसके ऊपर टिप्पणी करने की। हिम्मत की बात, मध्वाचार्य ग्रंथों के ऊपर कोई ना कोई वल्लभ संप्रदाय वाले कोई टिप्पणी कर देते हैं, ये इन्होंने ऐसा किया, ऐसा कैसे है, ऐसा उंगली दिखाते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी के संदर्भ ऐसे हैं। हाँ, इसलिए कहा जाता है ये जो संदर्भ इस प्रकार सुंदर प्रस्तुत किया जीव गोस्वामी पाद ने, भागवत को अगर अच्छी तरीके से समझना है, स्टडी करना है, जैसे हम लोग भगवदगीता को स्टडी करते हैं ना, बोलते हैं स्टडी, अगर भागवतम को स्टडी करना है, उसको अध्ययन करना है। जैसे पढ़ना अलग बात होता है, एक अध्ययन अलग होता है, अध्ययन करना है, संदर्भों को पढ़ने के बाद ही भागवत का अध्ययन हो सकता है। तो ये 6 संदर्भ इतने शक्तिशाली है, खास करके रूप गोस्वामी पाद अपने संदर्भ में लिखते हैं, खास करके तत्व संदर्भ में लिखते हैं जीव गोस्वामी पाद कि मैं सारे जितने भी वैष्णव आचार्य, खास करके रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के उनके शिक्षाओं के पर आधारित होते हुए मैं इन संदर्भों की रचना कर रहा हूँ। तो जब जीव गोस्वामी पाद संदर्भ को रचना करते हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन मध्वाचार्य का बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, सबसे बड़ा लाइब्रेरी उस समय मध्वाचार्य के पास था। तो मध्वाचार्य ने अपने ग्रंथों में जो जो श्लोकों को कोट किया है उसको मैं प्रमाणिक मानते हुए स्वीकार करके लिखता हूँ। इसलिए जीव गोस्वामी पाद बहुत एक्सपर्ट थे, फिलासफी में एक्सपर्ट थे, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे, ट्रेनिंग में एक्सपर्ट थे, ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसमें एक्सपर्ट नहीं थे। संगीत में एक्सपर्ट थे, अनेकों प्रकार के जो डेटी विग्रह की सेवा में वो एक्सपर्ट थे। ही वॉज ए एक्सपर्ट पर्सन जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी पाद के जो 6 संदर्भ है बड़ा प्रसिद्ध है। 6 संदर्भ में, खास करके तत्व संदर्भ में, इवन अन्य संदर्भों में आखिरी में लिखते हैं कि रूप सनातन के अनुगत्य हुए जो वैष्णव विश्व वैष्णव राज्य सभा की प्रसन्नता के लिए मैं ये संदर्भ को रचना कर रहा हूँ, उनको उनकी मार्गदर्शन के लिए संदर्भों की रचना कर रहा हूँ। तो ये विश्व वैष्णव राज्य सभा, ये जो शब्द हैं सबसे पहला जीव गोस्वामी पाद ने अपने तत्व संदर्भ में रचना किया, जिसके ऊपर आधारित होते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना किया। ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहाँ से आया, ये विश्व वैष्णव राज्य सभा जो जीव गोस्वामी पाद ने तत्व संदर्भ में रचना किया है, विश्व उसका अनुवाद इंटरनेशनल हो गया, हाँ, वैष्णव राज्यसभा का अनुवाद क्या हुआ, सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो आप बोलोगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, वैष्णव क्या होता है, कृष्णा कॉन्शियस होता है ना, हाँ, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस शब्द कहाँ से लिया प्रभुपाद जी ने, आप सबको मालूम है रामानंद संवाद में, चैतन्य महाप्रभु रामानंद संवाद में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक को कोड करते रामानंद राय, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियता मिति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमे मूल्यम एकलं जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रसभाविता, हम लोग बोलते हैं कृष्ण भावनामृत संग, वही ना कृष्ण भावन, कृष्ण भक्ति रसभाविता, क्योंकि वैष्णव जो है कृष्ण भक्ति रसभाविता होता है, इसलिए अगर आप विश्व वैष्णव के जगह पे आप कृष्ण भक्ति रसभाविता डालेंगे, राज्यसभा को सोसाइटी बोलेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये शब्द कृपा ने अपने मनगणन नहीं किया है, कोई भी आचार्य मनगणन कभी नहीं करते हैं, वो पहले के आचार्यों के ऊपर जो भी लिखे गए उसी चीज़ को हमारे जो समझ में आए इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। और ये छह संदर्भों के बाद जीव गोस्वामी पाद ने और एक संदर्भ पर रचना किया जिसका नाम है क्रम संदर्भ। ये क्रम संदर्भ कुछ और नहीं है, भागवतम के कमेंट्री है, भागवतम के कमेंट्री को क्रम संदर्भ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं जीव गोस्वामी पाद ने सात संदर्भों की रचना किया, नहीं एक्चुअली छः हैं, छः प्लस एक, तो ये छठे जो संदर्भ हैं भागवत के ऊपर थीसिस है या एक उसको विश्लेषण करना है, और सातवां जो है कमेंट्री है, भागवत के ऊपर टीका है। वैसे जीव गोस्वामी का भागवत के ऊपर टीका जो है, जो प्रमुख प्रमुख श्लोक है उसके ऊपर छोटे छोटे एक एक लाइन की टीका है, लंबा चौड़ा टीका नहीं है। जैसे आप देखेंगे वल्लभाचार्य का टीका देखेंगे बहुत लंबा लंबा रहता है, सनातन गोस्वामी पाद का जो दशम टिप्पणी दशम स्कंद का जो टीका है वो देखेंगे वो लंबा लंबा रहता है, रूप गोस्वामी और विश्वनाथ जी ठाकुर का इतना लंबा ना छोटा है, लेकिन जीव गोस्वामी पाद का एक एक लाइन है, जस्ट वन वन लाइन टीका, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा गहरा तत्व को रचना किया है। और गोपाल विरुदावली इनका और एक ग्रंथ है, और ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म संहिता के ऊपर उन्होंने एक भाष्य का रचना किया है, और गोपाल चंपू, हाँ बहुत सुंदर ग्रंथ है गोपाल चंपू। गोपाल चंपू में रूप गोस् जीव गोस्वामी पाद अनेकों अनेकों कृष्ण के जो लीला आप सुनी भी नहीं होंगे कई ऐसे ऐसे जो लीला हैं जैसे जैसे उनको प्रकट हुआ है वो सब लीलाओं को वो रचना करते हैं, और खास करके उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है हरिनाम अमृत व्याकरण। वैसे अनेकों अनेकों बहुत इनका इनका जो लिस्ट बहुत बड़ा है, वैसे तो पूरा करते जाएंगे तो करीबन 25 ग्रंथ जो अभी उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसा कहते हैं कि जीव गोस्वामी पाद का इससे भी अधिक ग्रंथ हैं जो अभी लुप्त हो चुके हैं मिलते नहीं हैं। तो हरिनामामृत व्याकरण है, ये हरिनामामृत व्याकरण जो है उसके अंदर जीव गोस्वामी पाद ने सोचा ये जो अभक्त के द्वारा लिखा हुआ व्याकरण है, यानी वो भी बड़े विद्वान हैं लेकिन पाणिनि हैं, अनेकों अनेक व्याकरण हैं, उसको पढ़ने के द्वारा कृष्ण भक्ति कैसे होगा, कभी कभी हो सकता है कृष्ण भक्ति से दूर चले जाए, तो ऐसा व्याकरण का रचना करूंगा जो भगवान की नामों से युक्त हो। तो उन्होंने क्या किया, जो पाणिनि वाले बड़े बड़े लंबे लंबे शब्दों को सूत्रों को रचना करते हैं वो सब को उन्होंने सारांश रूप में एक ग्रामर का संस्कृत ग्रामर का एक बुक को ही बना दिया, उनका नाम है हरिनामामृत व्याकरण। यानी प्रत्येक जगह नाम से ही है, भगवान का नाम से ही हर चीज़ का व्याकरण हुआ है, जैसे कोई संधि है समास है वो सब भगवान के नाम से होगा, जैसे विष्णुजन बोला जाता है कॉन्सनेंट्स को विष्णुजन बोला जाता है, वैसे हरिजन बोला जाता है, ऐसे उन्होंने कॉन्सनेंट से वोल से उन सबको भगवान के नाम से उन्होंने किया। कृष्ण चंद्र दीपिका है, सूत्र मल्लिका है, धातु संग्रह, धातु संग्रह बहुत बड़ा ग्रंथ है। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद ने क्या किया, जितने भी संस्कृत में धातु हैं वो सबको वापस संग्रह किया, क्योंकि बहुत सारे धातुओं लुप्त हो चुकी थी। और रसामृत शेष है, माधव महोत्सव है, माधव महोत्सव बहुत अद्भुत ग्रंथ है जिसके अंदर राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बनाया भगवान ने, और राधा रानी ने कहा वृंदावनेश्वरी मुझे वृंदावनेश्वरी बनाया, लेकिन ये जो उत्सव है जिसमें हमको मुझे वृंदावनेश्वरी बनाया ये उत्सव का नाम माधव महोत्सव होगा। तो वैसे बड़ा सुंदर ग्रंथ है, संकल्प कल्पवृक्ष है, और भवार्ण सूचक चंपू है, गोपाल तापणी टीका है, ब्रह्म संहिता के ऊपर टीका है, रसामृत टीका है, उज्ज्वल निर्माण उज्ज्वल टीका है, योग सार टीका है, गायत्री भाष है, पद्म पुराण के ऊपर आधारित होते हुए उन्होंने कुछ ग्रंथ को रचना किया है। वैसे 25 ग्रंथ हैं जो जीव गोस्वामी पाद ने रचना किया है। तो ये कुछ जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथों की परिचय है। तो आज हम और एक गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में आप प्राय सभी जानते हैं, वो कृष्ण की लीला में वो कौन है, रति मंजरी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था कृष्णपुर में हुआ था। उनका नाम, पिताजी का नाम था गोवर्धन मजुमदार और उनका चाचा का नाम था हिरण्य मजुमदार। ये बड़े ऊंचे परिवार में जन्म होने के बाद भी बड़े वैष्णव परिवार में जन्म लिए और गोविंद मजुमदार हिरण्य मजुमदार वो इतने महान वैष्णव थे, इतने बड़े वैष्णव थे उस समय। उनका एक ही विचार था, क्या विचार था, बंगाल में कोई भी वैष्णव भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई वैष्णव, और कोई भी वैष्णव कुछ भी मांगे हम देंगे। और उस समय नवाब हुसैन शाह की राज था, तो इसलिए वो लोगों ने नवाब हुसैन शाह के उनके जो टैक्स कलेक्टर उनसे बातचीत करके वो सारा टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदारी वो लिए थे, बहुत बड़ा काम था। और उस पैसे से वो सोच रहे थे कि हम जितना अमीर होंगे उस पैसे के द्वारा वैष्णव समाज की रक्षा होगी, उनकी विचारधारा इस प्रकार थी। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ वो लोगों ने सोचा कि हमारा पुत्र जो है वो भी इसी प्रकार का करेगा, वो हमसे भी ज़्यादा धन कमाएगा, बहुत ज़्यादा अन्य वैष्णवों की सेवा करेगा। तो इसलिए एक दिन ऐसा हुआ, उनके सेवकों को कहें नज़दीक में साधु संत आए हैं तो उनके पास हम भेजेंगे, हरिदास ठाकुर हैं और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो उनके सेवकों को बुलाए, तो सेवकों को बुला के लेके गए, ये हमारे पुत्र को लेके जाओ हरिदास ठाकुर के पास, साधु है, महान साधु है, हरि नाम करते हैं, उनका आशीर्वाद दिला लो। तो उनके सेवक लेके गए रघुनाथ दास गोस्वामी को। बचपन में रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे से बालक और हरिदास ठाकुर के पास गए, हरिदास ठाकुर प्रणाम किया, प्रणाम करके हरिदास ठाकुर ने इस बालक को देखा, देख के उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर्वनाश हो गए। अभी बहुत खुश हो रहा है। दो दिन से उनके पीछे बड़ा मायापुर गुरुकुल में जाओ करके उनके माता पिता डरे हुए। तो सेवक सुन के बड़ा हैरान हो गया। अभी जब वापस घर में गए तो उनके पिताजी ने पूछा सेवक से, साधु ने क्या आशीर्वाद दिया? सेवक ने कहा बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि आपके जैसा बहुत अमीर बनेगा, सारे वैष्णव समाज की बड़ा सेवा करेगा। वहाँ बड़े एकदम खुश हो गए। अभी सेवक ये थोड़ी ना बोलेगा उन्होंने आशीर्वाद दिया था ऐसा करके। तो जब उसी समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके अभी वृंदावन की ओर जा रहे थे तब शांतिपुर पहुँचे। जब शांतिपुर पहुँचे उस समय अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को छल करके उन्होंने शांतिपुर लेके आए थे। उस समय सची माँ का मुलाकात हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। ये पता लगा हिरण्य मजुमदार को, गोवर्धन मजुमदार को, उस समय हरिदास ठाकुर अपने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को लेके गए। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी का सबसे पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ। तो उस समय से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रति अत्यंत आकर्षण हुआ। वैसे बातचीत नहीं हुआ था लेकिन दर्शन करने मात्र से रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे बस मेरा जीवन केवल महाप्रभु की सेवा करने के लिए है, उन्होंने निश्चय किया था। और उस समय से मन में रखे थे मैं कब भाग जाऊँ, कब चले जाऊँ महापुरुष से मिलने कब जाऊँ, वो ऐसा उनके मन में विचार हमेशा रहा करता था। इन छोटे से बालक थे, अभी क्या करें, माता पिता का बात सुनना पड़ेगा। तो धीरे धीरे से जैसे जैसे समय बीता गया, कुछ समय के बाद आप सबको मालूम है चैतन्य महाप्रभु वो रामकेली गांव में जाने से पहले, वैसे पुरी से जब वृंदावन जाने की तैयारी थी उनकी, और वृंदावन जाने के बहाने अस्तित्व में राम के लिए आए थे। राम के लिए आने से पहले वापस शांतिपुर आए थे, विद्यानगर शांतिपुर उनके भक्तों से मिलने के लिए आए थे। जब शांतिपुर आए उस समय वापस मालूम पड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि महाप्रभु आए, तुरंत महाप्रभु से मिलने के लिए महाप्रभु से मिलने के लिए गए कहाँ, शांतिपुर। जब शांतिपुर गए महाप्रभु से मिलने के लिए, बैटरी ऑन, महाप्रभु से मिलने के लिए गए तो क्या हुआ, महाप्रभु के पास जाके सीधा दंडवत किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। दंडवत करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, अभी बस मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू कम अलॉन्ग विथ यू। तब ये देख के चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको एक उपदेश दिया, क्या ये मर्कट वैराग्य छोड़ो, ये मर्कट वैराग्य जो है वो ठीक नहीं है। ये मर्कट जो है बंदर क्या करता है, बंदर कभी ऐसा लगता है कि वो कपड़ा नहीं पहनता बंदर, एक तो दूसरा है फल फूल खाता है कि नहीं, हाँ, और एक पेड़ में कभी रहता है दूसरे पेड़ में कभी रहता है, गोस्वामी जैसा हाँ गोस्वामी कम से कम एक रात एक पेड़ पे रहते, लेकिन बंदर तो एकदम दो मिनट ये पेड़ पे दूसरे दो मिनट पेड़, ऐसा लगता है ये बंदर महा गोस्वामी है लेकिन असलियत में बंदर बंदर ही होता है, चाहे उसका व्यवहार जो है वैरागी जैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि बंदर जो है वैरागी हैं। वैरागी नाटक जरूर करता है लेकिन वैरागी नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को, हे रघुनाथ सुनो, अभी तुम अंदर ही अंदर ही कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करो और बाहर से ऐसा व्यवहार करो ताकि तुम एकदम पक्का मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो, यानी बहुत अच्छा ड्रामा करो तुम, मैं भौतिकवादियों करके ड्रामा करो। इसलिए इस बात के ऊपर सबको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, हर पति को बहुत अच्छा ड्रामा करना चाहिए, मैं बहुत अच्छा पति हूँ, और हर पत्नी को ड्रामा करना चाहिए, बहुत अच्छी पत्नी हूँ, और हर जितने भी सगे संबंधी ऑफिस में भी जाते हैं बहुत अच्छा ड्रामा करना चाहिए, बहुत अच्छा मैं नौकरी करता हूँ, मैं अच्छा व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, भगवान के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न करना चाहिए। हाँ तब रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु की ये आज्ञा सुने, आज्ञा सुनने के बाद ऐसा सुंदर व्यवहार करने लगे कि एकदम सब लोग अचंभित हो गए, सारे उनके माता पिता भी अचंभित हो गए, अरे ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अच्छा लड़का हो गया है, बहुत अच्छा पुत्र है, और हमें हमारा जो बिजनेस है कारोबार है उसमें भी अच्छा व्यवहार करता है, ऐसा वो सोचने लगे। तो इधर चैतन्य चरितामृत का अंतलीला के छठे अध्याय के 13वां श्लोक से उस लीला को पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो छठे श्लोक के बाद हमको, हाँ 14वां श्लोक, छठे अध्याय के 14वां श्लोक से, प्रभुर श्रीहटे तेनो निज करे याया मर्तक वैराग्य छाड़ी हैला विषयी प्राय। तो उन्होंने कहा कि मर्तक वैराग्य जो है उससे अच्छा है कि तुम क्या करो, ऐसा नाटक करो, घर जाओ ऐसा नाटक करो ताकि तुम एक बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति हो। भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्म, भीतरे वैराग्य हृदय में वैराग्य को अपनाओ और बाहिरे सर्व कर्म, बाहर जो है सारे कर्मों को अच्छी तरह से करो। देखियता माता पिता आनंदित मन, तो माता पिता जो है उसको देख के बड़ा आनंद, माता पिता बड़ा आनंद होता है, बच्चा जो है अच्छा पढ़ाई करता है ना बहुत अच्छा लगता है उनको, जब छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है उनको इसलिए माता पिता पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ओ जी कैसे हमारा बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ाई भी करे और अच्छा भक्ति भी करे हमारा बच्चा अच्छा बिजनेस भी करे और अच्छा भक्ति भी करे, हमारा पति जो है अच्छा पति भी बने अच्छा भक्त भी बने इसको बोलते हैं वी वांट द बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स मतलब भौतिक जगत का भी बहुत अच्छा चाहिए और आध्यात्मिक जगत, दोनों लड्डू चाहिए ये खजम नहीं होता तो दो कैसे हजम होगा मत रहा ते प्रभु आईला वर्त अभी पाइला प्रभु पाशे चली बारे योगाद करिला। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिला कि अभी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन मथुरा जाके वापस आए हैं और पूरी जगन्नाथ पुरी पहुंचे हैं, तो उन्होंने सोचा बस अभी मुझे मिलना है। है ना काले मुलोकेर एक मलेच्छाधिकारी सप्तग्राम मुलोकर श्री हाय चतुधारी चातुधारी। जब ये उस समय सप्तग्राम में जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी हिरण्य मजूमदार गोवर्धन मजूम के चाचा टैक्स कलेक्टर से उनका महीने का इनकम था 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, तो उनको क्या करना था 15 लाख स्वर्ण मुद्राओं को वो टैक्स के रूप में उनको देना था सरकार को, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रखना था। लेकिन ये लोग क्या करते थे, केवल 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते थे और जो बाकी जो 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं वो एक्स्ट्रा कमाते थे। ये देख के ये कुछ समय के बाद उसको पता लग गया, उधर के जो जो जमींदार है या उधर के जो नवाब हुसैन शाह के जो टैक्स कलेक्टर है उनको इंचार्ज है, उनको मालूम पड़ गया। तब वो लोग तुरंत आए, आके इनको मारने के लिए आए, इनको पकड़ने के लिए आए। तो वहाँ घर में आए तो उस समय वो दोनों नहीं थे, हिरण्य मजूमदार गोवर्धन मजूमदार नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे से बालक है वो थे। और उस समय इतना अच्छी तरह सारे कारोबारों को संभाल पाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे उन्होंने कहा हाँ प्रतिदिन रघुनाथ करिया वस्त्रन, रोज रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटते थे और बापा जटारे आना नहीं पाए बे यातन। तो लोगों ने कहा तुम्हारे बाप को जल्दी बुलाओ नहीं तो तुमको बहुत यातन होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत एक सुंदर जगह उन्हें लोगों का मन ऐसा परिवर्तन किया, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको कहा। रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार के थे, जो कायस्थ होते हैं ना वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको सोचा अभी उनका हृदय को कैसे परिवर्तन करो, तो उन्हें क्या किया, ये जो मुसलमान चौधरी है उनको इस प्रकार बोलने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारा पिता ज्येष्ठ हो ना तुम्हारा दुई भाई। तेरे कहा हाँ तुम्हारा दुई भाई, मेरे पिता जो हैं वो ज्येष्ठ है बड़े भाई और आप जो है उनके बड़े भाई हो, असल में आप दोनों भाई भाई हो। भाई भाई तुम्हारा कलह करे सर्ववादी, दो भाइयों के बीच में ना कभी कभी झगड़ा होता है, कभी झगड़ा होता है और अगले दिन यही दो ही भाई बैठ के साथ में बैठ के खा जाते हैं, है कि नहीं। सर घर में भाई रहते हैं जैसे बचपन में खासकर होता है, दो भाई बहुत झगड़ा करेंगे, बाद में माँ बोलती है वो खाने के लिए आओ, तुरंत आके दोनों साथ में मजे से खाने बैठ जाते हैं, हंसते रहते हैं। तो ये दो भाइयों के बीच व्यवहार है, कबू कला कबू प्रीति इतरा निश्चय नहीं, हाँ खाली पूछे तीनों भाई है बे एकतानी, स्टेप में तीनों भाई एक ही जैसे है, आप सब लोग भाई हो, हाँ आप में मेरे पिता में कोई अंतर नहीं है, जैसे मेरे लिए मेरे पिता हैं आप भी मेरे पिता हो। और क्या पिता पुत्र को इस प्रकार का व्यवहार करना ठीक है क्या, हमी ऐसे पितरा तुम्हारे थे बालक, मैं तुम्हारा बालक हूँ, हमी तुम्हारा पालया तुम्हें हमारे पालक, मस्जिद में मैं तुम्हारे पर निर्भर करता हूँ, तुमको मुझे पालन करना चाहिए। हाँ अस्तित्व में जो व्यक्ति आपका शरणागत है, ये शरणागत व्यक्ति को डांटना मारना ये शास्त्र के विरुद्ध है। अस्तित्व में आप तो मुसलमान हो, मुसलमान संत होते हैं। रघुनाथ दास से कह रहे तुम्हें सर्व शास्त्र जाने, सारे शास्त्र जानते हो, हाँ जिंदा प्रिया प्राय, हाँ आप जो है जिंदा प्रिया, हाँ प्राय जिंदा प्रिय मतलब जो संत होते हैं आप उसके बराबर संत के बराबर हो। ये तो सुनी सी मलेचारा मन आदर हैला, उनका मन पूरा पिघल गया। रघुनाथ दास से इतना सरल बात सुन के उन्होंने कहा, आंखों में आंसू आ गया, दही वाक्य आश्रु पड़े कान दिया लगीला, उनको तो रोना शुरू कर दिया। ये है रघुनाथ दास गोस्वामी भक्त के उनमें शक्ति। नसीहत में ये लोगों का जो कठोर होता है उसको परिवर्तन करना है, हमारी भाषा मधुर होना चाहिए, हमारी भाषा कठोर है लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो पाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी की भाषा इतना मधुर थी, भले उन्होंने असल में सब झूठी बोला था। इतना मधुर तरीके से बोले रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको मारने के लिए आया तुरंत वो रोने रोना शुरू किया, आलिंगन किया, तब उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जब आएंगे ना वापस उनको बोल देना जो एक्स्ट्रा कमाया ना आधा मुझे देना आधा वो रख ले। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनके माता पिता इनके पिता के ऊपर इनके चाचा के ऊपर बड़ा समस्या आया, वो समस्या को ने एकदम बिल्कुल अपनी सुंदर मधुर वाणी से सब समा सब सब शांत कर दिया। अस्तित्व में कोई भी समस्या होती है, दो लोगों के बीच में समस्या होती है, उसका समाधान एक ही तरीके से हो सकता है। आप अगर ये करोगे ये सही है वो गलत है और झगड़ा बढ़ेगी, है कि नहीं? तो उस समय एक समाधान क्या है, समाधान दो चीज़ है, एक है शांति से सुनो और मीठा शब्द बोलो और दोनों शांत होकर चले जाएंगे। क्या बोलेंगे? इसके पास आने से कोई फायदा नहीं है। ये हमारी झगड़े को सुलटाने वाला नहीं, इससे अच्छा शांति से काम करें। है कि नहीं? तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसलिए शांति से काम करेंगे। इसके पास जाएंगे तो शांति से बैठ के सुनेंगे, शास्त्र के दो तीन मीठे शब्द सुनाएंगे, हमको भी शांत कर देंगे, उनको भी शांत कर देंगे। इससे अच्छा कि हम जो उनके पास जाए ही ना। ये है इस्कॉन मैनेजमेंट। इसलिए कभी भी ना कोई भी समस्या लेके अधिकारी के पास मत जाइएगा, क्योंकि समाधान मिलने ही वाला नहीं है। शास्त्र के दो तीन बातें सुना देंगे और थोड़ा अच्छे से सुनेंगे, शांत हरे कृष्ण जप बोलेंगे और भेज देंगे। इसलिए क्यों टाइम वेस्ट करते हो? तब रघुनाथ दास गोस्वामी इसके बाद रोज उनका चालू हो गया वापस, पहले भी चलते रोज भागना चालू हो गया। रोज भागते तो उनको पकड़ के वापस लाते थे, रोज भागते थे पकड़ के लाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। तब एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ ने कहा हिरण्यकशिपु को, उन्हें कहा इसको बांध के रखो, इसको रस्सी से बांधो। तब उनकी पिता ने कहा, हिरण्यमजुमदार ने कहा, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ये सब बांधे दे नारके यमन माना। ने कहा इंद्र समान ऐश्वर्य हमारे पास, और रघुनाथ दास को विवाह हो गया था उस समय, अप्सरा स्त्री अप्सरा समान, अप्सरा के समान स्त्री है ये सब अगर बांध देते, अगर ना अगर उनको बांध नहीं पाते हैं तो उनको और क्या चीज बांध सकता है। दाद्री बंदने तनिर रखीबा के मते जन्मदाता पितामारा प्रारब्ध कांदिते। तो ये इतने बड़े ऐश्वर्य है, इतना स्त्री उसको बांध नहीं सकता है, हम उनके माता पिता है, माता पिता का स्नेह उनको बांध नहीं सकता है, तो और क्या चीज उनको बांध के रख सकता है। चैतन्य चंद्र कृपा हना छे यहारे चैतन्य चंद्र बातुल के राखी बाते पारे। चैतन्य चंद्र महाप्रभु उनको पूर्ण तरीके से कृपा दे चुके हैं। जिसको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिला ना वो घर में कैसे रह सकता है, ऐसे है उनकी पिता पत्नी को समझा रहे हैं। तो तबे रघुनाथे किच्छ विचार लमाने नित्यानंद गोसाई पाशे चली वारे आराधिने। तो ऐसे रोज चर्चा हो रही थी उनकी पिता और माता के बीच में। रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिला, उनके पिता को खबर मिला कि नज़दीक में नित्यानंद प्रभु आए हैं, चलो कम से कम नित्यानंद प्रभु से मिलाते हैं तो उन तो शांत हो जाएंगे। ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने कहा चलो उनको नित्यानंद प्रभु के पास भेजेंगे, उनके सेवकों को भेजें, जो भी चाहिए उनकी व्यवस्था करना करके रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के पास में भेजें। तो नित्यानंद प्रभु उस समय पानीहट्टी आए थे, पानीहट्टी जो है कलकत्ता से 10 मिनट पे है। आप कभी अगली बार मायापुर जाएंगे ना पानीहट्टी ज़रूर जाइएगा। अगर सुबह निकलेंगे आप मायापुर से, नवद्वीप से निकलेंगे, मायापुर से बस लेके निकलेंगे, आप बस वालों को ज़रूर बोलिए पानीहट्टी लेके जाए। पानीहट्टी में हमारा छोटा सा इस्कॉन के भक्तों का एक छोटा सा केंद्र है, वहाँ बड़ा अच्छा प्रचार भी होता है, बड़े अच्छे भक्त बड़ा अच्छा प्रसाद व्यवस्था करते हैं, गंगा के एकदम तट में है, बहुत सुंदर जगह है। उधर से हावड़ा स्टेशन जो है 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का रास्ता है, अगर ट्रैफिक नहीं तो 1 घंटा, ट्रैफिक हो तो 1.5 घंटा लगता है। तो पानीहट्टी में ये बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। पानीहट्टी ग्रामे पाइला प्रभु रा दर्शन कीर्तनीय सेवक संगे आरु भौजन। बहुत सारे जन थे, नित्यानंद प्रभु थे, बड़ा अद्भुत तरीके से कीर्तन चल रहा था उस समय। पहुंचे रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए। और जैसे उधर पहुंचे तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को दूर से देखे और जाके उधर ही दूर से प्रणाम किए। जैसे दूर से प्रणाम किए नित्यानंद प्रभु जो है दूर से देखे रघुनाथ दास गोस्वामी को, देखा कहा चोर दूर दूर से प्रणाम करता है, नज़दीक आओ इधर। हाँ ऐसा नज़दीक बुलाया, नज़दीक बुला के कहा सुनी प्रभु कहे चोरो दिले दर्शन। हाँ चोरी जैसे दर्शन देते हो। हाँ आए आए आज ही तुम्हारा करीनू दंडन, आओ तुमको दंड देता हूँ करके नज़दीक बुलाया। जो प्रेम होता है ना उसमें इस प्रकार के प्रेमवश बात करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु बोलिया ते हो निकट ना करिए गमन। तब रघुनाथ दास स्वामी जल्दी जल्दी नित्यानंद प्रभु के नज़दीक नहीं आ रहे थे। तब तो थोड़ा दूर दूर में थे क्योंकि महान व्यक्ति के नज़दीक जाना थोड़ा सा शर्म लगता है। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत उठ के खड़े हो गए, उसको जबरदस्ती पकड़े रघुनाथ दास को खींचते अपने पास लेके आए और क्या किया नीचे गिराया रघुनाथ दास को सर को। और नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण को रघुनाथ दास को सर के ऊपर रखे। कौतिक नित्यांग सहज दयामय रघुनाथ कहे कि चुहा सदाए। और ऐसा सर रख के चरण के ऊपर उठाया रघुनाथ दास गोस्वामी को उठा के नित्यानंद प्रभु कहते रघुनाथ दास गोस्वामी को निकटे न आसिया चोर भय दूरे दूरे, नजदीक नहीं आ रहा था चोर, दूर दूर भाग रहा था। आज ही लगे पंचैया दंडिनो तुम्हारे, तुम्हारा ये कार्य के लिए तुमको दंड देता हूँ। तुमको क्या दंड है? दही चीड़ा भक्षण करहा मोरगणे मोरगणे, मेरे जितने भी लोग हैं मेरे भक्त हैं उन सबको दही चीड़ा खिलाओ। सुनी आनंदित हो रघुनाथ माने, रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा आनंद हुआ ठीक है। हाँ जैसे बोलते ना कोई क्लास में लेट आता है को अगले संडे फीस स्पॉन्सर समथिंग नहीं था उसी प्रकार का कुछ है। शिक्षण निज लोक पटाइला ग्रामे बक्षय द्रव्य लोक सब ग्रामा हथियारे। तो जैसे मालूम पड़ा कि नित्यानंद प्रभु सबको दही चीड़ा खिला रहे हैं, आजू बाजू में जितने भी ग्राम के लोग हैं सब लोग इकट्ठा हुए। तब तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी कहा कि उनके नौकरों को और खुद भी गए थे आजू बाजू में जितने भी दुकान हैं, बाजू के गाँव में जितने भी दुकान सब गाँव में जाओ, जितना दूध मिलता है सब लेके आओ, जितना चीड़ा मिलता है जितना दही मिलता है जितना केला मिलता है सब लेके आओ। ऐसा चीड़ा दही दुग्ध संदेश आरा चीनी काला सब द्रव्य आनना चौधरी के धरिला, सबको एक जगह रखे। तो उन्हें क्या किया दूध को थोड़ा सा उबाल उबाल के घड़ा बनाया, दूसरी जगह उसको दही बनाया। और चीड़ा को सबसे पहले उन्होंने क्या किया कुछ चीड़ा साफ करके जो है जो कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा घाड़ा बना हुआ दूध में लगाया डाला और कुछ दही में डाला, उसके ऊपर शक्कर और अनेकों अनेकों जो बताशा वगैरह होता है वो सब चीज़ें उन्होंने डाला और बहुत सारे उन्होंने फ्रूट डाला खास करके केला वो सब डाला और कर्पूर डाला। आरा ग्रामांतरे है ते सामग्री अनिला शत दुए चौरी होना तनारा अनिला। और अनेकों अनेकों बहुत सारे लोग जाके और सामान लेके आने लगे, इतने लोग बढ़ गए हैं कि नित्यानंद प्रभु के हाथ सब लोग अपने अपने हाथ में सब द्रोण लेके बैठे थे, दो दो हाथ में दो दो द्रोण, एक में दही वाला चीड़ा था एक बार दूध में चीड़ा था। सब लोग खड़े हैं और गंगा में भी पूरा लोग भर गए थे, सब लोग लेके थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, अभी दोनों हाथ में है तो ये कैसे खाएंगे। उस समय नित्यानंद प्रभु इस चीज़ को देख के बड़ा बड़ा अचंभित हो गए। तब नित्यानंद प्रभु ने स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु का और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, चैतन्य महाप्रभु आए करके नित्यानंद प्रभु सबके पास गए और एक हाथ में से लेके दही और चीड़ा महाप्रभु के मुख में डाल रहे और महाप्रभु क्या कर रहे हैं जो दूध और चीड़ा जो नित्यानंद प्रभु मुँह में डाल रहे। इस प्रकार दही चीड़ा उत्सव बड़ा अद्भुत तरीके से मनाया है। दही चीड़ा उत्सव के वर्णन बहुत सुंदर तरीके से हुआ है इधर चैतन्य चरितामृत में। ये जितने भी ये फेस्टिवल है उत्सव को सब लोग देख के सुन के वे आनंदित हो गए। तब प्रभु कहे ये द्रव्य दिन कर ये भोजन रात्रि तुम्हारा घरे प्रसाद करिनो भक्षण। उस समय राघव पंडित उसके नजदीक पे रहते थे। राघव पंडित के बहन थी दमयंती, बहुत अच्छे कुकिंग करते थे। ठाकुर पंडित उस समय नित्यानंद प्रभु के पास आके ने कहा कि आप मेरे घर में भोजन के लिए आए थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दिन को मैं सब लूँगा और रात को आके आपके यहाँ प्रसाद लूँगा। तो राघव पंडित ने सुन के ठीक है कहा, गोप जानी अमी बहु गोप गण संगे आमी सुख पाई ले पैनो भोजन रंगे। ने कहा कि मैं स्थित में नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं गोप जाति का हूँ, इसके वजह से ये जो भोजन है दही चीड़ा यही खाता था मैं, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा और मैं इधर गंगा के तट पे पिकनिक मना रहा हूँ। राघवे वासना दुई कुंदी दे आईला राघव द्विविध चिड़ा ताहे बिजाइला। तब नित्यानंद प्रभु और राघव पंडित दोनों बैठे और ये जो दो प्रकार के जो चिड़ा है वो रेके वो खाने लगे। सकल रोकेरा चिड़ा पूर्ण ऐ बेहाइला ध्यान तवे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। इस प्रकार ध्यान में महाप्रभु को बुलाया और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को ये भी खिलाया। तो दही चिड़ा उत्सव का वर्णन होने के बाद श्री चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो नदी चिड़ा उत्सव होने के बाद अगले दिन की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए आए। रघुनाथ यहाँ से कैला चरण वंदन, रघुनाथ दास को सेवाए चरण में वंदन किया। राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन, राघव पंडित ने उनको निवेदन किया। अधम पवर मुई हीना जीवाधम मोर इच्छा है पांच चैतन्य चरण। तो मैं बहुत निम्न प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। वामना है ये न चंद धारी बारे छाए, तूने कहा कि मैं अस्तित्व में वामन हूँ, छोटा कद का हूँ, एक चंदा व्यक्ति जो है चांद को पकड़ने जाता है, इस प्रकार की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो, लेकिन मेरे सारे प्रयास जो इस प्रकार रहेगा। यत बार पाई अमी गृहादि छड़िया पिता माता दुई मोरे रखिया बांधिया। मैं क्या करूँ, बार बार मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूँ महापुरुष मिलने के लिए, लेकिन जितने बार प्रयास करता हूँ मेरे माता पिता मुझे बांध के रख देते हैं, तो मैं क्या करूँ। तुम्हारा कृपा बिनो केहे चैतन्य नाई पाए। तो कहते हैं कि कृमा तुम्हारी कृपा के बिना, आपकी कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु मुझे चैतन्य महाप्रु प्राप्त नहीं होंगे। तुम्हें कृपा कैले तारा अधमे है पाए, अगर आप कृपा करोगे ये अधम जो है वो चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। अयोग्य मुई निवेदन करिते करिय बाह्य मोर चैतन्य देह गोसाए हन सदय। अस्तित्व में मुझे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करने का कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करोगे तो निश्चित रूप में मुझे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। मोरा माता पदी धरी करह प्रसाद निर्विघ्न चैतन्य बना कर आशीर्वाद। तो आप मेरे सर के ऊपर आपका चरण रखिए और चरण रख के मुझे ये आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार प्रार्थना किया, नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर उनके हंसे और हंसते हुए सारे भक्तों को उन्होंने कहा, रघुनाथ दास का जो सुख हैं संसारिक सूत्र हैं इंद्र के समान हैं, और दूसरी बात चैतन्य कृपा ते स्नेहा नहीं भाया माने सबे आशीर्वाद करे पाओ का चैतन्य चरणे। तो इतना सुख है उनके पास, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी इनके अंदर देखो कितना तीव्रता है चैतन्य महापुरुष मिलने की। इसे माँ नित्यानंद प्रभु ने कहा सारे भक्तों को, अभी आशीर्वाद दो रघुनाथ दास गोस्वामी को ताकि उनको चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो। कृष्ण पद पद्म गंध यही जाने पाए ब्रह्म लोक आदि सुख तनर नहीं पाए। जो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाता है, उसका सुगंध को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्मानंद को भी वो पार करने वाला है, तो ये भौतिक सुख उसको कैसे बांध सकता है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु तबे रघुनाथ प्रभु निकटा बुलाईला, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास को नस्तिक बुलाए। तनामाते पड़ा धरी कहते लागिला। इस प्रकार बुला के अपने चरण कमलों को रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर रख के इस प्रकार बोले लगे। क्या बोले लगे? तुम्हें करियाले पुलिना भोजन, तुमने इस प्रकार तो भोजन खिलाया, तुम्हारे कृपा करी गौर करी लागमन। ये भोजन खाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, तो इसलिए पहले से तुमको चैतन्य महाप्रभु मिल चुका है। कृपा कहे कैला छिड़ा दुग्ध भोजन, नित्य दे की रात्रि र कैला प्रसाद भक्षण। असत में जो चैतन्य महापुरुष रात को भी आए, आके नृत्य करके भी गए, तुम्हारा उद्धार ले गौर आईला अपने तो तिला तुम्हारे यथा विघ्नादि बंधने। तो तुमको इस संसार से उद्धार करने के लिए चैतन्य महापुरुष स्वयं आए, आप चिंता मत करो, अभी तुम्हारा उद्धार हो गया है और शांति से घर जाओ और सब ठीक हो जाएगा। निश्चिंत नाम अपना भवन है आचेरे निर्विघ्न वाय चैतन्य चरणे, निर्विघ्न होते चैतन्य महापुरुष चरण प्राप्त कर लोगे। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आनंद से घर गए। आनंद से घर घरने के बाद तो उधर बड़े आनंद में थे रघुनाथ दास गोस्वामी। घर के आए, घर के गेट के अंदर प्रवेश किए, लेकिन उसको बंगला था, बड़ा सा पैलेस जैसा था, उसके अंदर नहीं जा रहे। तो पिताजी बाहर आए, उन्होंने पूछा अंदर कहाँ अंदर आओ? बोला कि पिताजी आपने बहुत सुख दिया मेरे जीवन में, लेकिन जो सुख मैंने उधर देखा ना पानीहाटी में, वो सुख मुझे आप नहीं दिया। तुमने कहा कौन सा सुख है जो तुमको नहीं दिया? तो मैं दूंगा, क्या क्या चाहिए बोलो। उधर जो है बड़े आनंद में थे, कुटिया में रहने का जो आनंद है ना, वो मुझे बचपन से नहीं मिला। ऐसा है क्या? चलो तुम्हारे लिए कुटिया बना देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक, कुटिया बना दिया। तो वो अपने पैलेस के अंदर नहीं गए, कुटिया में रहने लगे। वैसे नित्यान वो रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। इस प्रकार विचार करते हुए एक दिन कैसे हुआ, एक पुजारी जो है वो सेवा पे नहीं आ रहा था। तो सेवा पे नहीं आ रहा था, क्या करें? तो उधर के जो उनके गुरु हैं वो आके रघुनाथ दास गोस्वामी बोलने लगे कि आप अगर समझाओगे ना तो समझ जाएंगे, आप चलो उनको पुजारी को समझाओ। रघुनाथ गोस्वामी कहा चलो, रात हो गया था। तो चलते चलते रघुनाथ दास ने सोचा, वो पुजारी उनको कहा आप जाओ, मैं पुजारी को समझा दूंगा, रात हो गया है। तो उन्हें कहा वो चले गए। तो रघुनाथ दास ने सोचा ये रात है, अभी कोई देख नहीं रहा है, यही मौका है, करके वो उधर घर से भाग गए। जैसे घर से भागे, उनको दिन है रात है नहीं मालूम पड़ रहा था, वो पूरा पूरब की दिशा में गए। तो उल्टे रास्ते में से चलते 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 जगन्नाथपुरी पहुँचे। जब जगन्नाथपुरी का पूरा महीना का एक महीने का रास्ता है, रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिन में पहुंच गए चलते चलते, और 12 दिन में केवल तीन ही बार वो भोजन ग्रहण किए और आराम किए सोए। रात भर चलते चलते महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, उधर मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में है, गंभीरा में है चैतन्य महाप्रभु, लीलाएं करते रात को रहते। रघुनाथ दास को उससे जाते हुए तुरंत महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके तुरंत स्वरूप दामोदर को बुलाए, स्वरूप दामोदर इधर आओ, मेरे तीन रघुनाथ है, तीन रघुनाथ में ये जो रघुनाथ है ना, इनका नाम रहेगा स्वरूप है रघुनाथ, जो स्वरूप का रघुनाथ, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप है रघुनाथ कहा जाता है। तो स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या लीला किया, और किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला प्रदान किया, गुंजावाला प्रदान किया, और जैसे चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन गए, वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी रूप सनातन के साथ क्या क्या लीलाएँ किया, क्या ग्रंथों की रचना किया, वो हम उसका कल चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ साथ में जो अन्य दो गोस्वामी हैं, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके विषय में भी हम कल चर्चा करेंगे। वैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी में